الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اور آپ خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، کہ ان کو ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. جب بھی ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی ملا، اور ان کو واقعتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. گزشتہ آیتوں کے اندر نافرمانوں کا انجام عدت للکافرین کے تحت بیان ہوا، یہاں فرما برداروں کا صلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ایسی جنتیں بہشتیں نصیب ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، جن کی خصوصی صفت ہے کہ نہریں ان کے نیچے سے، ان جنتوں کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی. ہر جنتی کو یہ نعمت نصیب. کھانے کے لیے ان کو یہاں صرف پھلوں کا تذکرہ ہے، دوسری جگہوں پر کھانے کی اور نعمتوں کا ذکر ہے، پینے کی اور نعمتوں کا ذکر ہے. پھلوں کی ایک خصوصیت یہاں جو بتائی گئی وہ یہ کہ وہ ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اس کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے. اس کی مختلف تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ جنت کے جو پھل ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، مزے الگ ہوں گے ان کے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنت کے جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے دیکھنے میں. یہاں جیسا سیب ہے، جنت کا سیب بھی اسی جیسا، لیکن جنت کے حساب اور معیار کا. یہاں جو انگور اور انار ہیں وہ جنت میں بھی ویسے ہی شکل کے، لیکن وہاں کے معیار اور وہاں کے لحاظ سے اور حساب سے. اتو بھی ہی متشابہا، اور واقعتاً ان کو ایسے ہی ملتے جلتے پھل دیے بھی جائیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی. پاکیزگی یہاں جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی، ہر دو اعتبار سے ہے کہ جنت کی بیویوں کے اندر دنیا کی طرح سے بول و براز کا سسٹم نہیں ہے، حیض و نفاس کا سسٹم نہیں ہے. اور مطہرہ روحانی، وہاں کی پاکیزگی یہ ہے کہ یہاں پہ ناراضگیاں ہیں، یہاں پہ کدورتیں ہیں، یہاں پر ناچاکیاں ہیں، اور سب سے کچھ نہ ہو تو جو سب دنیا کی سب چیزوں کے اندر موجود ہے، فنا کی صفت، مٹ جانے کی، ختم ہو جانے کی صفت یا عیب، وہ وہاں پر ہے، وہاں پر نہیں ہوگا وہ عیب. تو ظاہری عیبوں سے بھی پاک ہوں گی اور باطنی عیبوں سے بھی پاک ہوں گی. اپنے شوہروں کو چاہنے والیاں، ان سے کبھی ناراض نہ ہونے والیاں، ہمیشہ ان سے خوش رہنے والیاں، یہ ان کی صفات ہوں گی. وہم فیہا خالدون، دنیا کے اندر یا تو انسان کے پاس میں نعمت نہیں ہوتی ہے، یا نعمت باقی رہ جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان باقی رہتا ہے، نعمت چھین لی جاتی ہے. یعنی فنا کی، زوال کی، ختم ہو جانے اور معدوم ہو جانے کی صفت یا انسان کے ساتھ اس کو دیکھنے کو ملتی ہے، یا پھر چیزوں کے ساتھ میں جو اس کو ملنے والی ہیں، نعمتوں کے ساتھ میں جو اس کو ملتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ میں. جنت کے اندر یہ نظام ہے، ہم فیہا خالدون، وہ جنتیں بھی ہمیشہ ہیں، یہ لوگ بھی ہمیشہ ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، خلود کی نعمت اور خلود کا انعام بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے۔ جنت ہر طرح کی نعمتوں سے خالی ہوتی، صرف اس میں تکلیف کا سامان نہ ہوتا۔ ہر طرح کی نعمتوں سے وہ خالی ہوتی، تکلیف کا اس میں سامان نہیں ہوتا، اور اس میں ہمیشگی کی صفت ہوتی۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہمیشگی کی صفت کی وجہ سے ہر نعمت سے خالی ہونے کے باوجود بھی دنیا کے مقابلے میں ترجیح کی مستحق ہوئی۔ اور یہ عجیب صفت ہے واقعی۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ جہنمیوں سے اگر کہا جائے کہ دنیا میں جس قدر ریت کے ذرے ہیں، ان ذروں کے برابر سال، دن نہیں گھنٹے نہیں، سال تم کو جہنم میں رہنا ہوگا، پھر اس کے بعد تم کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، تو جہنمی خوش ہو جائیں گے۔ جنتیوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ جنتیوں، زمین کے جتنے ذرے ہیں ریت کے، ان ریت کے ذروں کے برابر سال تم کو یہاں رہنا ہوگا، پھر تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا، نکلنا پڑے گا، تو ان کا مزہ مقدر ہو جائے گا، کرکرا ہو جائے گا۔ خلود کی نعمت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ایک پھانس رہتی ہے، اگر ختم ہونا ہو، فنا ہونا ہو، پتہ نہیں کب چھن جائے، پتہ نہیں ہم کب ختم ہو جائیں، پتہ نہیں یہ دونوں چیزیں، ہم اور نعمتیں، سب کے سب کب نمٹ جائیں۔ تو فنا کی صفت کے ساتھ میں ہمیشہ ایک پھانس، ایک خلیش، ایک نقص، ایک ناتمامیت کی کیفیت رہتی ہے۔ وہاں کا آغاز ہی ہوگا خلود سے، وہاں سب سے پہلا انعام کہ اب یہ چیز جو مل گئی ہے ختم کبھی نہیں ہوگی۔ یہ نعمتیں جو دی جا رہی ہیں، اس کا سبب بتایا جا رہا ایمان اور عمل۔ ایمان تو بنیاد ہے، کلید ہے، چابی ہے اور جڑ ہے، اور عمل اس کے لیے ایسے ہے جیسے جڑ سے تناور درخت کے اوپر شاخوں پر پھل نکل آتے ہیں، پتیاں نکل آتی ہیں۔ اعمال جو ہوتے ہیں وہ درخت کے شاخوں کی طرح ہوتے ہیں، اعمال جو ہوتے ہیں وہ درخت کے پھل کی طرح ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، پتیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہے بنیاد تو ہے جڑ، اگر وہ جڑ قائم ہے تو بندہ نجات کا مستحق ہے، عمل نہ بھی ہو تب بھی، لیکن ظاہر ہے اگر اعمال نہیں ہوں گے تو بدعملی کی اس کو سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن جڑ موجود ہے، اس واسطے کبھی نہ کبھی وہ اس کا تناور درخت اس کا پھر سے نکل آئے گا، وہ اس کے لیے نجات کا ایک سلسلہ نظام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نجات اولی چاہتا ہے، جہنم سے بالکل ہی آزادی چاہتا ہے، اولین جنت کا داخلہ چاہتا ہے، بلا حساب جنت میں داخلہ چاہتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے جو معیار ہے، اس کے لیے جو اصول اور قانون ہے، وہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں نے عمل کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے، عمل نہ بھی ہو تو ایمان تو ہے لیکن نہ تمام ہے۔ جیسے جڑ اور تنا موجود ہو تو بولیں گے درخت ہے، اگرچہ کہ اس کی ایک ڈالی، ایک شاخ کاٹ دی گئی، اس کی پھول پتیاں کاٹ دی گئی، اس کو چھانٹ دیا گیا، تو ہر طرح سے اس کو چھانٹ کر، جیسے یہاں کے سرما کے اندر آپ دیکھیں گے درخت خالی ہو جاتے ہیں، بالکل پتوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے، ہر اعتبار سے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن درخت تو موجود ہے، وہی شکل ہے۔ جب پھر اسپرنگ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر پھل بھی آنے لگتے ہیں، پھول بھی آنے لگتے ہیں، پتیاں بھی آنے لگتی ہیں، پھر سے سرسبز ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال کا حساب اس قسم کا ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ سمجھا ہے کہ جز کے باقی نہیں رہنے سے کل بھی فنا ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ جز کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کی ہر چیز کے اندر دو طرح کے جز ہوتے ہیں، ایک جز، ایک حصہ اس کا ایسا ہوتا ہے جس کے بغیر اس کا قیام ہوتا ہے، وہ چیز موجود ہو سکتی ہے، اور کچھ اجزاء اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر وہ چیز قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے خود درخت ہے، درخت کے اندر ایک جڑ والا حصہ ہے، ایک شاخ والا حصہ ہے، پتوں والا حصہ ہے، پھل پھول والا حصہ ہے، تو अगर जड़ नहीं होगी तो फल फूल का सवाल ही नहीं, हालांकि ये भी एक हिस्सा है। तो जड़ एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर दरख्त का वजूद ही नहीं है, और फल फूल पत्तियां वगैरह ये ऐसा हिस्सा है जो ना भी हो तो दरख्त की कोई ना किसी ना किसी शक्ल शक्ल में दरख्त बाकी रहता है। ईमान भी ऐसे ही है, ईमान भी ऐसे ही है कि वो जड़ है, वो अगर वो बाकी है तो अमाल उसके फल फूल हैं, पत्तियां हैं, वो अगर नहीं भी होंगी तो ईमान का जड़, ईमान की जड़ सलामत रहने से समझा जाएगा कि ईमान बाकी है। तो असल चीज़ यहाँ पे ये यह है कि बाज़ मंतिकियों ने, उसूलियीन ने और अहले अक्ल ने अमाल को ईमान में दाखिल मानकर उसकी जो दलील दी है वो ये दी है कि ईमान और अमल मिलकर हैं, एक दूसरे का हिस्सा और पार्ट है, एक चीज़ के दो हिस्से हैं। जाहिर है अमल नहीं होगा तो जुज निकल गया, और जुज निकल गया तो ईमान फिर बाकी नहीं रहा, वो यूं कहते हैं। तो गलती उनसे जो हो रही है ये दावा, ये दलील देने में, वो ये कि वो हर तरह के जुज को किसी चीज़ के क़ियाम के अंदर ज़रूरी तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि अभी बताया गया कि जुज दो तरह के होते हैं, कुछ जुज वो होते हैं जिनकी वजह से उस चीज़ का क़ियाम और वजूद होता है, और कुछ जुज ऐसे होते हैं वो हट भी जाएँ तो वो चीज़ मौजूद रहती है, उसके बगैर नाकिस और नातमाम होती है, ख़त्म नहीं हो जाती। तो आमाल ऐसा ही हिस्सा है, ऐसा ही जुज है कि जिसके बगैर असल चीज़ मौजूद तो है लेकिन नाकिस तौर पर, नातमाम तौर पर। लेकिन बहरहाल अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात को कुरान करीम बार बार दोहराता है और बताता है कि सिर्फ ईमान के भरोसे नहीं रह जाना, अमल की भी ज़रूरत होगी जहन्नम से बचने के लिए। उसके बाद इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा, यकीनन अल्लाह ताला हया नहीं फरमाते इस बात के अंदर कि वो मिसाल बयान करें मच्छर की या उससे भी बढ़कर किसी और चीज़ की। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यालमून अन्नहु अल्हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, जो ईमान ले आते हैं वो समझते हैं कि ये उनके रब की तरफ से बरमौका है ये मिसाल। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जिन लोगों, जो लोग मुनकिर और काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह का मकसूद क्या है। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्ला अल्फ़ासिक़ीन, इसकी इसी के ज़रिए से अल्लाह पाक बहुत सों को गुमराह भी कर देते हैं और बहुत सों को हिदायत से हमकिनार भी कर देते हैं। वमा युज़िल्लु बिही इल्ला अल्फ़ासिक़ीन, और इससे गुमराह अल्लाह नहीं करते मगर फ़ासिकों ही को। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िही, जो फ़ासिक अल्लाह से किए हुए अहद को उसको पख्ता करने के बाद में तोड़ डालते हैं। व यक़्तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन यूसल, और अल्लाह ने जिन ताल्लुकात या वादों और माहदों को जोड़े रखने का हुक्म दिया उसको तोड़ देते हैं। वो युफसिदून फिल अर्ज़ी, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, ये हैं वो लोग जो खसारा खसारे वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। कुरान करीम के अल्लाह ताला की तरफ से होने पर शुबा करने वालों ने इस एतबार से भी शुबा किया कि इसके अंदर बाज़ हकीर चीज़ों का ज़िक्र मिलता है, जैसे बुतों की कमज़ोरी को बताने के लिए एक जगह ज़िक्र आया कि ये बुत न इतने कमज़ोर हैं कि अगर कोई मक्खी मच्छर इनके ऊपर बैठ जाए तो ये उसको अपने ऊपर से हटा नहीं सकते। ये कुरान ने मिसाल दी, कुरान के अंदर मिसाल दी गई। लोगों ने इतराज़ किया कि मोहम्मद कहते हैं कि ये कलाम खुदा की तरफ से है, अगर खुदा की तरफ से होता तो इसमें ऐसे हकीर चीज़ों की मिसाल नहीं होती, उसमें तो कोई बड़ी अजीम चीज़ों की मिसाल होनी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि चीज़ जैसी है मिसाल वैसी होगी, कलाम चाहे किसी का भी हो। मुक्तज़ाए अक्ल यही है, बलागत का तकाजा भी यही है, चीज़ हो हकीर उसकी मिसाल देनी हो तो अजीम चीज़ से कैसे देंगे। बुत कमज़ोर हैं तो उनकी कमज़ोरी को दिखाने के लिए किसी कमज़ोर मखलूक को ही मिसाल में पेश करना पड़ेगा। अगर उस मौके से अजीम जानवरों का, चीज़ों का जिक्र कर दिया जाता है, मिसाल के तौर पर हाथी का किया जा रहा, मिसाल के तौर पर शेर का जिक्र किया जा रहा, तो मिसाल से जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो तो हासिल होगी नहीं। तो खुलासा ये है कि जैसा मौका होगा वैसी मिसाल होगी, जैसी बात होगी उसी तरह उसकी मिसाल होगी। बात अगर अजीम होगी तो मिसाल भी अजीम होगी, बात अगर हकीर होगी तो फिर मिसाल में भी हकीर चीज़ों का ही जिक्र होगा। और जो चीज़ें उर्फ के अंदर हकीर समझी जाती हैं, शरीयत के किसी मकसद को पूरा करने के लिए और शरीयत का कोई हुक्म पूरा करने के हिकमत और मसलहत से उर्फी हया के तौर पर उस बात को बयान करने से रुका नहीं जाएगा। ये है असल चीज़ समझने की। इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा। मच्छर जैसी मिसाल को अल्लाह पाक मिसाल में बयान, चीज़ को मिसाल में बयान फरमाते हैं और उसे हया नहीं फरमाते हैं। यानी तुम लोग ऐसी चीज़ों का जिक्र करने को हकीर समझते हो। और फन मौका होगा किसी बात को समझाने का तो हकीर चीज़ से भी मिसाल देने की ज़रूरत होगी तो दी जाएगी, वो बयान करने से शर्माया नहीं जाएगा शरान। और अल्लाह पाक का यही, अल्लाह पाक की यही सुन्नत है। अल्लाह पाक नहीं नहीं हया फरमाते, क्योंकि मिसाल देने के लिए समझाने के वास्ते इसी चीज़ को जिक्र करना ज़रूरी है, तो यही चीज़ जिक्र करेंगे। और मच्छर को जिक्र किया गया, मक्खी को जिक्र किया गया। फमा फौकहा, अल्लाह पाक तो उससे भी बढ़कर, यानी हकारत में जो उससे बड़ी हुई है, उससे भी जो कमज़ोर तर है, उससे भी जो हकीर है, उससे भी जो मामूली और कमतर है, उसको भी जिक्र करने की ज़रूरत पड़ेंगे तो अल्लाह पाक करेंगे। ये मतलब अब होगा क्या? तो सवाल करने वालों ने ये किया था कि अगर अजीम हस्ती का कलाम है तो मिसाल भी अजीम ही होनी चाहिए। जवाब दिया गया कि मिसाल देने वाले को देख कर नहीं दी जाती है, जिस चीज़ की मिसाल है उसको देख कर दी जाती है। उसका जवाब ये हो गया और अक्ल का तकाजा ये। फिर हक ताला फरमाते हैं कि ऐसी मिसालें देने से समझ में आ जाता है, एक और इम्तिहान और आजमाइश भी हमको मकसूद है, वो भी हम पूरा पूरा कर लेते हैं उसके ज़रिए से। वो ये है कि ऐसी मिसालें देने के बाद में जिसके दिल में ईमान है और अल्लाह पर जिसका ईमान है वो कहता है कि अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। हाँ, ये मिसाल मौके की है बहुत, यहाँ ऐसी ही मिसाल होनी चाहिए थी। काफिर ये कहते हैं कि इस मिसाल से क्या मकसूद है अल्लाह का, जैसा कि तुम कह रहे हो। तो ईमान और कुफ्र को जांचने का भी मैयार बन जाता है इस किस्म की मिसाल को बयान करना। अब एक मिसाल एक ही है, एक के लिए वो हिदायत का जरिया है और एक के लिए वो गुमराही का जरिया है, एक के लिए वो ईमान का जरिया है, दूसरे के लिए वो इनकार का जरिया है। युजिल्लु बिही कसीरा, मिसाल एक है, बात एक है, वाकया एक है, उसके जरिए से अल्लाह पाक बहुत सों को गुमराह कर रहे हैं। यानी बहुत से लोग अपनी नादानी की वजह से उसको अपने खिलाफ में ही यूज़ कर रहे हैं, तो हक ताला भी फिर उनका जैसा अमल है वैसे हिसाब से नतीजे निकाल रहे हैं। जलालत की तरफ उन्होंने जाना चाह रहे तो खींच के उनको हिदायत की तरफ थोड़ी लेके आएंगे, गुमराह करेंगे। तुम जहन्नम की तरफ जाना चाह रहे, खुद को नहीं बचाना चाहते, तो फिर अल्लाह पाक भी जाने देंगे तुमको। युजिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा, और बहुत से ईमान वाले इसको अपने हक में यूज़ कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम समझ के इसको मान रहे हैं और अपने लिए उसको हिदायत का सामान बना रहे हैं, तो फिर अल्लाह पाक उनके लिए इस रास्ते को आसान कर रहे हैं। तो जो जिस तरफ जाना चाह रहा है अल्लाह पाक वहाँ रास्ता रोक के खड़े हुए नहीं, वो उस तरफ जाना चाहता है तो जाने देते हैं, खुला रास्ता रखते हैं, आजमाइश मकसूद है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन होता गुमराह कौन है? वही जो इताअत की हदूद से निकल जाता है, जो फासिक है। फासिक कहते हैं आगे बढ़ जाना हदूद इताअत से, इताअत की फरमाबरदारी की जो हदें होती हैं उनसे आगे निकल जाने वाले को फासिक बोलते हैं। कुरान करीम में ये लफ्ज़ काफिरों के लिए ज़्यादातर आया है, काफिर और फासिक एक माना में आए। फ़िक़ह के अंदर ये चूँकि सुनने में आता रहता है इसलिए बात बयान की जा रही है कि कुरान करीम में तो फ़िस्क का जो इस्तेमाल आया है वो काफिर के हम माना आया है, काफिर के माना में आया है, लेकिन यहाँ फ़िक़ह के अंदर भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है, वो सिर्फ काफिर के लिए यूज़ नहीं होता, काफिर के लिए भी होता और काफिर से नीचे बदअमल के लिए होता, जो काफिर ना हो लेकिन अमल बदअमल करने वाला हो उसके लिए। तो दोनों इस्तिलाहों को अगर जहन में रखा जाए तो वो कन्फ्यूजन नहीं होता कभी, कुरान में किस माना में आया, फ़िक़ह में किस माना में आया। ऐसा क्यों किया गया? जब कुरान में वो जालिम काफिरों के लिए था, जालिमों के लिए था, तो फिर फ़िक़ह के अंदर उसको बदअमलों के साथ ख़ास क्यों किया गया? बदअमलों के लिए भी तो कोई ना कोई नाम चाहिए था ना, उनके हुक्म बयान करने के लिए भी तो कोई ना कोई हुक्म, कोई ना कोई नाम टाइटल चाहिए था। वो कौन सा लिए? वो फासिक का लिए। तो इससे इख्तलात इश्तबा हो रहा ना फिर, तो ऐसा क्यों किया गया? इश्तबा नहीं हो रहा क्योंकि काफिरों के वास्ते काफिर का टाइटल है, बदअमल के वास्ते फासिक का टाइटल है, जो मोमिन सालेह है उसके वास्ते सालेह का टाइटल है। तो जब तकसीम इस अंदाज से कर दी गई है कि हर शख्सियत अपने अमल के आईने में देख लिया जा सकता उस उनवान को देख करके, तो ये तो सहूलत के लिए ये काम किया गया है, कोई कुरान की मुखालफत में नहीं किया गया। और फिर बदअमली जो है ना फासिक के लफ्ज़ से बहुत मुशाबह, यानी बहुत मुताबिक है, वो बहुत ज़्यादा मैच होती है उसके लिए ये टाइटल। क्यों? फिस्क का मतलब है हुदूद इताअत से निकलना, बदअमली करने वाला भी यही करता है तो बहुत चस्पा होने वाला, बिल्कुल मुनासिब उसके लिए ये टाइटल है फासिक का। वो भाई वमा युज़िल्लु बिही इल्ला अल-फासिकीन, तो जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है वही इसके ज़रिए से फिर गुमराह होता है और इम्तिहानात के अंदर वो नाकाम होता है। अल्लाह पाक इस किस्म की मिसालें देते हैं तो उसका जहन इस तरफ चलने लगता है जो फिस्क के जो फासिकाना रास्ता होता है, जो फिस्क वाला रास्ता होता है। ये जो फासिक होता है ये करता क्या है, उसकी क्या सिफात है? यनकुज़ून अहदल्लाह मिन बादे मीसाक़, अल्लाह से पक्का अहद करके फिर उस अहद को तोड़ देते हैं। ये अहद से अहद अलस्त मुराद है। अल्लाह पाक ने तमाम रूहों को आदम अलैहिस्सलाम के पुश्तों से निकाल कर उनसे इकरार लिया था अपने उलूहियत और रुबूबियत का, तो सब ने कहा था भला, क्या पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा परवरदिगार रब नहीं हूँ, जो रब होगा वो मोहताज इबादत होगा, माबूद नहीं हूँ। तो कहा भला क्यों नहीं, आप रब भी हैं माबूद भी हैं, ताकीद से कहा था। दुनिया में आकर फिर वो जो इकरार किया था उस इकरार को तोड़ डाला है, उस अहद को तोड़ डाला है। यहाँ दो लफ्ज़ आए, एक अहद और एक मीसाक। अहद कहते हैं दो आदमियों के दरमियान जो माहदा हो, मीसाक कहते हैं जो बात कसम खा के तय और पक्की की जाए। अलगरस तो फासिक वो होता है जो अल्लाह के अहद को तोड़ देता है। आगे है वयक्तऊ नमा अमर अल्लाह बिही यूसल, अल्लाह ने जिन ताल्लुकात को जोड़े रखने का हुक्म दिया है उनको वो तोड़ता है। इन ताल्लुकात के अंदर वो ताल्लुकात भी आ गए जो बंदे के और उसके रब के बीच है, वो ताल्लुकात भी आ गए जो उम्मतियों के अपने नबी के साथ है, वो ताल्लुकात भी आ गए जो इंसानों के आम इंसानों के साथ है। जैसे मेरा एक ताल्लुक मेरे अपने वालदेन से, मेरी अपनी बीवी बच्चों से, मेरे अपने पड़ोसियों से, मेरे अपनी जॉब के लोगों से, और मेरे आम चलते फिरते इंसानों से जो साथ मिल जाते हैं। हर एक से एक ताल्लुक़ होता है, हर एक के कुछ ना कुछ हकूक और अहदो पैमान होते हैं, अंडरस्टूड जो होते हैं जिसको कहते हैं वो कुजुन अहद वयक्ताउ नमा अमर अल्लाह भी यूसल। तो इस्लाम तो हुक्म देता है सबके सब हकूक़ को अदा करने का, और नहीं अदा करने वालों को फासिक का लक़ब देता है, और अगर वो अल्लाह के इनकार तक पहुंच जाए तो उसको काफिर का नाम देता है। वही उसदू नफिल अर्ज, और ये भी कहता है इस्लाम कि जो इन ताल्लुकात को निभाते नहीं हैं उनको तोड़ते हैं वो दुनिया में फसाद मचाने का काम करते हैं। युफ्सिदून फिल अर्ध, यहाँ से फसाद आता है असल में। तो वादों को निभाना, ताल्लुकात को निभाना और किए हुए मुआहदों को पूरा करना, ये फसाद से बचने की अहम तरीन कलीद है, बुनियादी बुनियादी बात है। अगर फसाद से बचना है तो ये मुआहदों को पूरा करना होगा, ये ताल्लुकात को उस्तवार रखना होगा। जो ऐसा नहीं करते उलाइक हुमुल खासिरून, एक तो दुनिया के अंदर वो फसाद का नतीजा देखने को उनको मिलता है, और उलाइक हुमुल खासिरून आखिरत में सरतापा नुकसान उठाने वाले ये लोग हैं। यक्तऊ नमा अमर अल्लाह बिही अय्यूसल के तहत में एक बात यह जहन में रखना चाहिए कि रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए होती हैं, खासकर सिला रहमी का हुक्म इस्लाम के अंदर ताकीद के साथ आया। लेकिन एक चीज़ है, जिसको जोड़े रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया उसको तोड़ते हैं। कुछ रिश्तेदारियां करीब की होती हुई भी जोड़े रखने के काबिल नहीं होती, बल्कि उनको तोड़ना जरूरी होता है। जैसे इब्तिदाए इस्लाम में आप देख लीजिए तो बात जरा वाज़े समझ में आ जाती है। बेटा मुसलमान हो गया, वालदेन काफिर है, बोला गया हिजरत करके जाना होगा, वालदेन अकेले रह जाते हैं, रह जाने दो। इब्तदाई इस्लाम के ज़माने से मैं इस बात को वाज़ह करना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ताल्लुकात, वो ताल्लुकात जिनको आम तौर पर हक ताला ने निभाने का और उनको जोड़े रखने का हुक्म दिया है, ख़ास कैफियतों में आने के बाद उन्हीं को तोड़ने का हुक्म दिया जाता है बाज़ दफ़ा, या उनकी परवाह नहीं करने का हुक्म दिया जाता है। इब्तदाई इस्लाम में इसकी बहुत सी मिसालें हैं। कभी औलाद माँ बाप से जुदा हो रही है, वालदे औलाद मुसलमान हो गई है, वालदेन मुसलमान नहीं होते। अब हिजरत का हुक्म हो गया है, हिजरत के बगैर इस्लाम ना तमाम है, उनको बोला जरा जब तक हिजरत नहीं करोगे तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। दूसरे और रिश्तेदारों के साथ में ये हुक्म हो रहा है। यहाँ पर हम बाहर के मुल्कों के अंदर या वैसे ही आम, अब तो ये चीज़ बहुत आम हो गई है, लोग हलाल हराम का एहतमाम नहीं करते, यानी फ़र्क नहीं करते खाने पीने के अंदर, मामलात के अंदर जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं करते, दावतों के अंदर बिलखसूस ये चीज़ें देखने में आती है। तो अब एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार को दावत तो दे दी है, दावत देने वाला ज्यादा एहतमाम करने वाला नहीं है, जिसको दावत दी गई है वो थोड़ा सा खुदा का खौफ रखता है दिल में, चाहता है कि वे अल्लाह के हुक्म को पूरा करके चलें जब तक जीना है दुनिया में। अब वो सोचता है कि है रिश्तेदार, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाते हैं तो हराम खाना होगा या बेएहतियाती वाला खाना होगा, नहीं जाते हैं तो ताल्लुकात खराब होंगे, क्या करें। सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे रिश्ते को निभाने का हुक्म है जो अल्लाह के हुक्म की खुद परवाह नहीं करता, उससे आपको ताल्लुक जोड़ने का हुक्म है ही कहाँ। यक्ताऊ नमा अमर अल्लाह भी अयूसल, जिस ताल्लुक को जोड़े रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया है वो है जो खुद भी अल्लाह से डरता है और अल्लाह के अहकाम की रियायत रखता है, जो खुद अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, उससे तो हमको खुद किनारा कश होकर रहना है, ये चीज़ जहन में रखना है। वरना उलाइका हुमुल खासिरून, वो दावत खिलाने वाला भी नुकसान उठाएगा, दावत खाने वाला भी नुकसान उठाएगा। अल्लाह ताला इल्म सही अमल मकबूल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह।